खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा,
खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा,
मुश्किलों में भी सदा तू मुस्कुराए जा,
खुद पे भरोसा कर खुदा पे यकीन,
खुद पे भरोसा कर खुदा पे यकीन,
अजमा में कामयाबी तू झुकाए जा,
खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा,
मुश्किलों में भी सदा तू मुस्कुराए जा,
खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा, खुशियों के गीत सदा
सच की डगर पे जो होके निडर चलते हैं,
सबकी भलाई का ही वो काम करते हैं, हाँ वो काम करते हैं,
नित्य नया वो इतिहास रचते हैं, मर के अमर वो,
मर के अमर है वो कभी नहीं मरते हैं,
खाए जा,
खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा,
मुश्किलों में भी सदा तू मुस्कुराए जा,
खुद पे भरोसा कर खुदा पे यकीन।
ओम शांति। ब्राह्मण जीवन अनेक अनेक खूबियों से, अनेक अनेक विशेषताओं से सुसज्जित जीवन है। उन विशेषताओं में से, उन खूबियों में से एक विशेष विशेषता है कि ब्राह्मण जीवन सदा खुशियों भरे जीवन है। खुशियों के सागर बाप ने आप हम सभी को यह खुशियों से संपन्न ब्राह्मण जीवन प्रदान की है। ब्राह्मण जीवन में हर पल हर क्षण खुशियां ही खुशियां हैं, क्योंकि ये प्रभु पालना के जीवन है। और हम देखते हैं कि मानव जीवन में हर एक मनुष्य आत्मा की सबसे बड़ी जरूरत, सबसे बड़े नीड्स खुशी है। यदि जीवन में खुशी नहीं तो मानव जीवन नीरस होता है। खुशी के लिए हर एक व्यक्ति प्रयास करता है, क्योंकि खुशी के लिए कहा जाता है कि खुशी खुराक है। तो खुशी मन के लिए भोजन भी है, तो खुशी मन के लिए दवाई भी है, जिसके माध्यम से मन शक्तिशाली बनता है, सुदृढ़ बनता है। और एक शक्तिशाली मन, सुदृढ़ मन हर क्षेत्र में सफलता का अनुभव कराता है। इसलिए संसार की आत्माएं भी जीवन में खुशी लाने के लिए अनेक प्रकार के साधनों का उपयोग करती हैं। कोई धन को एकत्रित करके जीवन में खुशी लाना चाहते हैं, कोई साइंस के साधनों को एकत्रित करके जीवन में खुशी लाना चाहते हैं, कोई अनेक प्रकार के जो सांसारिक फेस्टिवल हैं, जैसे कि दीपावली है, होली है या अन्य और जो त्योहार हैं, उनके माध्यम से जीवन में खुशी लाने का प्रयास करते हैं। संसार में एंटरटेनमेंट के साधन से उनके माध्यम से जीवन में खुशी लाने का प्रयास करते हैं। संसार में समय प्रति समय जो फैशंस निकलते हैं, उन फैशंस के माध्यम से भी जीवन में खुशी लाने का प्रयास करते हैं। और विशेषकर भोजन, भोजन में भी लोग खुशी को ढूंढते हैं, इसीलिए वैरायटी प्रकार के व्यंजन बनाते हैं और उसके माध्यम से खुशी का अनुभव करते हैं। हम देखते हैं कि वर्तमान समय संसार में लोगों को साइट सीन्स का बहुत शौक है। क्यों? क्योंकि उससे उनको कहीं ना कहीं खुशी की प्राप्ति होती है, इसलिए अलग अलग स्थानों पर जाकर के वो एंजॉय करते हैं जीवन में खुशी लाने के लिए। साथ ही साथ सांसारिक और साधन है, जैसे कि फिल्में हैं, इंटरनेट है, जॉक्स हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में खुशी लाने का प्रयास करता है। लेकिन देखा जाता है कि ये सब साधन जो व्यक्ति को उपलब्ध हैं, ये व्यक्ति को स्थायी खुशी नहीं देते हैं। ये व्यक्ति को थोड़े समय के लिए, अल्पकाल के लिए खुशी की अनुभूति में लाते हैं, उनके जीवन में खुशी का अनुभव कराते हैं, लेकिन स्थायी रूप में नहीं। लेकिन मनुष्य के मन को स्थायी खुशी चाहिए, परमानेंट खुशी चाहिए, टेम्परेरी नहीं। इस ब्राह्मण जीवन में बाबा ने आप हम सभी को स्थायी खुशी में कैसे रहना है, स्थायी खुशी को कैसे लाएं, उसके लिए बहुत सारी विधियां बताई हुई हैं, बहुत सारे साधन दिए हुए हैं। बाबा कहते हैं एक बाप की याद में रहो तो सदा आप खुश रहेंगे, आपका चेहरा खुशी में खिला हुआ रहेगा, आपका मन सदा प्रफुल्लित रहेगा, क्योंकि बाप से आपको शक्ति मिलेगी, प्यार मिलेगा, खुशी मिलेगी। साथ ही साथ बाबा जो हमें डेली पढ़ाई पढ़ाते हैं, तो यदि हम डेली ये पढ़ाई पढ़ते हैं, इस पढ़ाई पर हमारा पूरा अटेंशन है, ध्यान है, तो इससे भी जीवन में खुशी प्राप्त होती है और खुशी बढ़ती है। और बाबा ने कहा कि जो बाप आपको रोज ज्ञान रत्न देते हैं, ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं, इन ज्ञान रत्नों की थालियों को अपने जीवन में धारण करके दूसरों को दान देंगे, संसार में जो आत्माएं परेशान हैं, टेंशन में हैं, उदास हैं, नीरस हैं, इनके जीवन में खुशी के बजाय गम है, परेशानियां हैं, उन आत्माओं को आप ये ज्ञान रत्न देंगे तो उनके जीवन में खुशी आएगी और आपको उसके रिटर्न में उनसे दुआएं मिलेंगी। तो जितना हम ज्ञान रत्नों का दान करते हैं, उतना जीवन में खुशी आती है। जैसे ब्राह्मण जीवन में बाबा ने अनेक प्रकार के साधन दिए हुए हैं, जिन साधनों के माध्यम से हम अपने जीवन में स्थायी खुशी का अनुभव करते भी हैं, कर भी सकते हैं। तो जैसे कि बाबा ने आज अव्यक्त मुरली में कहा कि ब्राह्मण जीवन की विशेषता है सदा खुशी में रहना, सदा मौज बनाना, क्योंकि ब्राह्मण जीवन मौजों की जीवन है। तो बाबा की ये अव्यक्त मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 13 जनवरी 1986, तो बाबा ने उस समय हमें जीवन में खुशी कैसे लानी है जीवन में खुशी का कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है, उन सब बातों के बारे में अवगत कराया। तो हम आज के मुरली को रिवाइज करते हैं। तो मुरली में सबसे पहली पॉइंट है कि बाबा ने सभा देखी और उस सभा में दो प्रकार की विशेषताओं से संपन्न आत्माओं को देखा। वो सभा कौन सी है? होली और हैप्पी हंसों की सभा। तो बाबा ने कहा कि बाप दादा होली और हैप्पी हंसों की सभा देख रहे हैं। फिर बाबा ने प्रश्न पूछा कि सभी होली के साथ साथ हैप्पी भी सदा जीवन में अनुभव कर रहे हो? क्योंकि होली अर्थात पवित्रता और उसकी निशानी है कि जीवन में हैप्पी अर्थात खुशी सदा होगी। अगर जीवन में खुशी नहीं है, जीवन में खुशी का अनुभव नहीं हो रहा है, खुशी के बजाय जीवन में उलझन है, जीवन में मूंझ है, परेशानी का अनुभव हो रहा है, तो जरूर कहीं ना कहीं पवित्रता की कमी है। तो बाबा कहते हैं कि ये अपने जीवन में देखना है कि जीवन में स्थायी खुशी है, खुशी बढ़ रही है, या खुशी का अभाव है, या खुशी कहीं कम हो रही है। तो मुरली से दूसरी पॉइंट है अपवित्रता की परिभाषा। बाबा ने कहा पांच विकारों को ही अपवित्रता नहीं कहा जाता है, अपवित्रता का बहुत बड़ा विस्तार है। ये पांच विकार जो है ये तो मोटा रूप है, इसका विकराल रूप है। इसके साथ साथ अपवित्रता के सूक्ष्म स्वरूप भी हैं, अपवित्रता के रॉयल स्वरूप भी हैं, अपवित्रता के साधारण स्वरूप भी हैं। तो बाबा ने कहा कि अपने जीवन में देखो कि अपवित्रता कहाँ कहाँ है, पांच विकारों के साथ साथ और जो अनेक प्रकार की बातें हैं, जैसे कि स्मृति की अपवित्रता। यदि हम देह भान में रहते हैं, देह की स्मृति में रहते हैं, तो ये भी अपवित्रता की श्रेणी में गिना जाएगा। यदि संकल्पों में संकल्प किसी व्यक्ति के प्रति चल रहे हैं, संकल्पों में नेगेटिविटी है, संकल्पों में किसी आत्मा के प्रति व्यर्थ भावनाएं हैं, तो वो भी अपवित्रता की श्रेणी में गिने जाएंगे। तो स्मृति की अपवित्रता, संकल्पों की अपवित्रता, दृष्टि की अपवित्रता, भावनाओं में अपवित्रता, किसी आत्मा के प्रति नेगेटिव भावना, व्यर्थ भावना, किसी को गिराने की भावना, किसी से बदला लेने की भावनाएं, अगर भावनाओं में ये नेगेटिव बातें हैं, तो ये भी अपवित्रता की श्रेणी में गिना जाएगा। संबंध संपर्क की अपवित्रता, किसी आत्मा पर प्रभावित होना, किसी आत्मा की विशेषता अच्छी लगना, किसी की जीवन शैली अच्छा लगना, किसी का चलना अच्छा लगना, किसी का बोलना अच्छा लगना। तो बाबा कहते हैं किसी आत्मा पर यदि आप किसी भी कारण से प्रभावित होते हैं, तो इसको भी अपवित्रता कहा जाएगा। तो अपवित्रता के बहुत सारी बातें हैं, जो मोटे रूप की भी हैं, सूक्ष्म रूप की भी हैं, रॉयल रूप की भी हैं। बाबा ने आज के मुरली में कहा कि नाम मान सम्मान की इच्छा, यदि आपको किसी से प्रशंसा मिल रही है और आप उस प्रशंसा में खुश हो रहे हैं, तो ये भी अल्पकाल की प्राप्ति है। बाबा ने इसको भी अपवित्रता कहा है, क्योंकि ये आपको सदाकाल की प्राप्ति से वंचित कर रहा है। इसलिए अपवित्रता के जो रॉयल रूप हैं, उनको भी चेक करना है, साथ साथ अपवित्रता के जो साधारण स्वरूप हैं, जैसे कि हंसी मजाक, किसी को कमेंट करना, टॉन्ट करना, जिससे दूसरी आत्मा दिल से कष्ट हो जाती है, तो बाबा इसको भी अपवित्रता कहते हैं। तो दूसरी पॉइंट है कि अपवित्रता की जो परिभाषा है उसको जानना। तीसरी पॉइंट है चेक करना और चेंज करना। बाबा ने मुरली में कहा है कि पहले अपने आप को चेक करो। बाबा ने पहले हम बच्चों को कहा कि अपने आप को चेक करो कि हमारे जीवन में किस रूप की अपवित्रता है। मोटे रूप की अपवित्रता तो ब्राह्मणों के जीवन में नहीं होती है, लेकिन कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप में या रॉयल रूप में या साधारण रूप में अपवित्रता जीवन में काम करती रहती है। इसलिए जीवन में बार बार खुशी के बजाय कभी उलझन, कभी मूझना, कभी स्थिति अप डाउन होना, ये सारी चीजें होती रहती है। तो बाबा कहते हैं पहले अपने आप को चेक करो, क्योंकि हमें अपने बारे में पूरी नॉलेज होती है। कोई दूसरा व्यक्ति हमारे बारे में कुछ कहेगा तो हो सकता है कि हम उसको एक्सेप्ट ना करें, लेकिन जब हम स्वयं अपने बारे में चेक करेंगे तो हमारे में कौन कौन सी गलतियां हैं, हम कौन कौन सी ऐसी गलती कर रहे हैं जो अपवित्रता की श्रेणी में आ रही है, तो हम उसको सहज ही स्वीकार कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा पहले चेक करो और फिर उसको चेंज करो, क्योंकि जब तक हम अपनी चेकिंग नहीं करेंगे तब तक हम अपने जीवन में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी अपवित्रता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो चेंज करने के लिए चेकिंग का होना अति आवश्यक है। तो तीसरी पॉइंट थी चेक करो और चेंज करो। चौथी पॉइंट है बाप दादा ने स्वयं चेकिंग की। पहले बाबा ने हम बच्चों को कहा कि आप अपने आप को चेक करो, फिर बाबा ने हमारे जीवन में जो हमारी दो विशेषताएं हैं, होली और हैप्पी, पवित्रता और खुशी, बाबा ने इन दोनों विशेषताओं को चेक किया। तो बाबा कहते हैं कि बाप दादा दोनों बातों को चेक कर रहे हैं, चेक किया कि जीवन में मनसा वाचा कर्मणा में पवित्रता कहां तक धारण की है, साथ साथ संकल्प बोल और कर्म में साधारणता कहां तक है। दूसरी बात, जीवन में रूहानी खुशी, अविनाशी खुशी, सदाकाल की खुशी कहां तक है। तो बाबा ने हम बच्चों के जीवन में हम बच्चों की स्थिति से ये दोनों बातें चेक की। फिर अगली पॉइंट है बाबा ने लक्ष्य दिया है, बाबा ने हमें हमारा लक्ष्य याद दिलाया, ये आपका लक्ष्य क्या है। तो आप हम सभी ब्राह्मण आत्माओं का लक्ष्य क्या है कि जीवन में सदा अविनाशी खुशी का अनुभव करना। बाबा कहते हैं आप बाप के पास आए ही इसलिए हो कि जीवन में स्थायी खुशी का अनुभव करते रहना। हम सभी खुशियों के सागर के बाप, खुशियों के सागर बाप के पास इसलिए आए हैं कि जीवन में हम स्थायी खुशी का अनुभव करते रहें। तो बाबा ने कहा कि आपका लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य को याद रखो। तो हम सभी का लक्ष्य है कि जीवन में स्थायी खुशी का अनुभव करते रहें। स्थायी खुशी अर्थात रूहानी खुशी, अविनाशी खुशी, जो किसी साधन पर, किसी व्यक्ति पर, किसी वस्तु पर डिपेंड नहीं है। तो बाबा ने कहा कि इसके लिए भी चेकिंग चाहिए। तो अगली पॉइंट है कि जो हमारे जीवन में खुशी है उस खुशी का आधार क्या है, उसकी चेकिंग। तो बाबा कहते हैं कि चेक करो कि हमारे जीवन में जो खुशी है उस खुशी का आधार क्या है। कोई साधन है, बाबा ने पहली बात कही, उसमें छह बातें बाबा ने गिनाई। पहली पॉइंट है साधन, क्या हमारे जीवन, क्या हमारी खुशी किसी साधन पर डिपेंड है, क्योंकि मानव जीवन में जीवन के लिए, जीवन में कंफर्ट के लिए, जीवन में सफलता के लिए साधनों का होना आवश्यक है। लेकिन इस ब्राह्मण जीवन में, पुरुषार्थी जीवन में जो भी हमें साधन उपलब्ध हैं, वो साधन हमारी अविनाशी खुशी का आधार ना हो, जीवन में सेवाओं की सफलता का आधार हो, जीवन में पुरुषार्थ का वो साधन हो, पुरुषार्थ में सहयोगी हो लेकिन हमारी खुशी का आधार ना हो। तो बाबा ने कहा कि अपने आप को चेक करो कि हमारी खुशी किसी साधन पर आधारित तो नहीं है। दूसरी बात बाबा ने कही प्राप्ति। जब जीवन में किसी को कोई विशेष प्राप्ति होती है, कोई उपलब्धि मिलती है, तो व्यक्ति को बहुत खुशी होती है और होनी भी चाहिए। लेकिन इस ब्राह्मण जीवन में यह नियम यहाँ लागू नहीं होता है, क्योंकि संसार में जो भी सांसारिक उपलब्धियां हासिल हो रही हैं या होती हैं, वो सब टेम्परेरी हैं, अल्पकाल की हैं। तो ब्राह्मण आत्मा को किसी भी अल्पकाल की चीजों पर डिपेंड नहीं होना है और ना ही अपनी खुशी को उन पर डिपेंड करना है। तो बाबा ने कहा कि अल्पकाल की जो प्राप्तियां हैं, क्या उन प्राप्तियों पर तो आपकी खुशी निर्भर नहीं है? तीसरी बात, सफलता। हर व्यक्ति जीवन में सफलता चाहता है और सफलता को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति हर संभव प्रयास करता है। उसके पास जो भी रिसोर्सेस हैं, साधन है, तन मन धन संबंध संपर्क, हर प्रकार के साधनों को यूज करके अपनी सफलता को हासिल करना चाहता है। तो बाबा कहते हैं जब जीवन में कोई सफलता आपको मिलती है या सफलता आपको मिल रही है, तो क्या वो सफलता आपके जीवन में खुशी का आधार है या आपकी खुशी अविनाशी प्राप्तियों के ऊपर निर्भर है? तो तीसरी बात थी सफलता। पहले पॉइंट कौन से थे? साधन। दूसरे प्राप्ति। तीसरे सफलता। चौथा मान्यता और नामाचार। जीवन में जब भी कोई विशेष कार्य करता है तो उसको बहुत सारी प्रशंसा मिलती है, उसको मान्यता मिलती है, उसका नामाचार होता है, लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। तो बाबा कहते हैं जब आप ये ब्राह्मण जीवन में सेवा करते हो तो संसार की आत्माओं को इससे बहुत फायदा होता है। संसार की आत्माओं के जीवन में खुशहाली आती है, उनका जीवन अच्छा बनता है, तो आपकी प्रशंसा करते हैं। तो जब संसार की आत्माएं आपकी प्रशंसा कर रही होती है तो उस समय जो खुशी मिल रही है वो खुशी टेम्परेरी खुशी होती है। तो उस समय जो खुशी मिल रही है जो प्रशंसा के माध्यम से, तो आपकी खुशी उस प्रशंसा पर निर्भर ना हो, क्योंकि यदि आज कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है, हो सकता है कल आपकी वो ग्लानी भी करे। तो यदि आज आप किसी की प्रशंसा पर खुश हो रहे हैं तो कल जब वो व्यक्ति आपकी ग्लानी करेगा तो फिर आपको दुख का भी अनुभव करना पड़ेगा। इसलिए किसी व्यक्ति की प्रशंसा, नामाचार, महिमा, इन बातों पर अपनी खुशी को निर्भर नहीं करना है। पांचवी पॉइंट है मन के अल्पकाल की इच्छाओं की प्राप्ति। जो मन के अल्पकाल की इच्छाएं हैं, यदि वो इच्छाओं की प्राप्ति होती है, इच्छाओं की पूर्ति होती है, तब भी व्यक्ति के मन में खुशी होती है। लेकिन मन में तो अनेक इच्छाएं उत्पन्न होती ही रहती हैं, क्योंकि मन की विशेषता ही है कि कोई ना कोई इच्छा उत्पन्न करना। तो यदि मन में जो इच्छाएं उत्पन्न हो रही है और वो इच्छाएं अल्पकाल की हैं और उन इच्छाओं की पूर्ति से जो खुशी मिल रही है, तो बाबा कहते हैं उनको भी देखो कि वो इच्छाओं की पूर्ति आपके खुशी का आधार तो नहीं है। और लास्ट पॉइंट बाबा ने कही किसी व्यक्ति पर डिपेंड खुशी। कोई व्यक्ति है, वैभव है, कोई साधन है, उन पर आपकी खुशी डिपेंड तो नहीं है? तो बाबा ने इसके लिए भी चेकिंग करने के लिए कहा कि इसके लिए चेक करो और अपने आप को देखो कि हमारी खुशी इन छह बातों पर डिपेंड तो नहीं है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि पहले सुनाई कि सांसारिक कोई भी उपलब्धि हासिल होती है, कोई फैशन है तो उससे खुशी मिलती है, कोई भोजन है उससे भी खुशी मिलती है, हम कहीं पिकनिक स्पॉट पर जाते हैं तो उस समय भी खुशी होती है, साइट सीन के लिए जाते हैं तो उस समय भी खुशी होती है। तो संसार में जो अनेक प्रकार की बातें हैं जो टेम्परेरी हैं, अल्पकालीन है, आज हैं कल नहीं रहेंगे, तो अपने आप को चेक करना है, देखना है कि हमारी खुशी उन बातों पर डिपेंड तो नहीं है। यदि उन बातों पर हमारी खुशी डिपेंड होगी तो जैसे ही वो बातें हमारे जीवन से खत्म हो जाएंगे तो हमारी खुशी भी उनके साथ साथ खत्म हो जाएगी। बाबा कहते हैं संसार की जो भी चीजें हैं ये संसार परिवर्तनशील है। तो इस संसार में जो कुछ भी है, चाहे संबंध है, कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, कोई साधन है, नाम मान शान है, इस संसार में जो कुछ भी आपको उपलब्ध हो रहा है वो सब टेम्परेरी है, अल्पकालीन है, क्षणिक है, विनाशी है। तो बाबा कहते हैं इनमें से किसी भी चीज पर आपकी खुशी निर्भर नहीं होनी चाहिए। यदि इनमें से किसी भी चीज पर आपकी खुशी निर्भर होगी तो जब वो उनका वो चीजों का अंत होगा तो उनके साथ साथ आपकी खुशी भी समाप्त हो जाएगी। बाबा ने कहा कि जो आपको साधन सुविधाएं सेलिब्रेशन प्राप्तियां उपलब्ध हो रही हैं, ये सब साइड सीन्स हैं, ये आपके जीवन की मंजिल नहीं है। तो अगली पॉइंट है कि ब्राह्मण जीवन में साइड सीन्स क्या है और मंजिल क्या है। तो बाबा ने कहा कि आपकी मंजिल है स्थायी खुशी, परवानी खुशी, अविनाशी खुशी, वो आपकी मंजिल है। उस मंजिल की ओर आपको निरंतर बढ़ना है, न कि साइड सीन में फंसना है। आपको जीवन में जो भी साधन प्राप्त हो रहे हैं, प्रशंसा मिल रही है, किसी व्यक्ति के साथ आपके संबंध अच्छे हैं, आपको नाम मान सम्मान मिल रहा है, या संसार के जो भी साधन सामग्री है उनसे जो खुशी की प्राप्ति हो रही है, बाबा ने कहा वो सब साइड सीन्स है। जैसे व्यक्ति साइड सीन्स के लिए जाते हैं तो उनको बहुत खुशी होती है क्योंकि उसमें बहुत वैरायटी होती है, बहुत आकर्षक होता है। तो आपके जीवन में ये जो भी बातें होती हैं ये भी बहुत आकर्षक होती हैं। साइड सीन्स का मतलब ही है आकर्षक, आकर्षित करने वाले, मन को लुभाने वाले। तो अपने आप को देखना है कि जो भी साइड सीन वाली बातें हैं, अल्पकाल की बातें हैं, वो हमारे मन को लुभाती तो नहीं है, हमारा मन उन बातों में फंसा हुआ तो नहीं है। यदि हमारा मन उन बातों में फंसा हुआ होगा तो जब वो बातें समाप्त हो गई तो हमारे मन की जो हमारी आंतरिक खुशी है, स्थायी खुशी है, वो भी समाप्त हो जाएगी। अगले पॉइंट है बाप दादा की ऑब्जर्वेशन। बाबा ने हम बच्चों के जीवन में देखा कि ब्राह्मण आत्माएं जब बाप के पास आए तो लक्ष्य लेकर के आए कि हम बाप के पास स्थायी खुशी का अनुभव करेंगे। तो दुनिया में जो अल्पकाल की हद की चीजें थी उन सभी को छोड़ करके यहाँ बाप के पास बेहद की प्राप्ति करने के लिए आए, बेहद की खुशी की अनुभूति करने के लिए आए। लेकिन बाबा ने देखा है कि बच्चे कहीं ना कहीं बेहद की प्राप्ति करते करते कहीं ना कहीं अल्पकाल के जो साधन है, जो हद है, वो अपना मुख उधर मोड़ लेते हैं। तो बाबा ने हम बच्चों के जीवन में देखा कि बच्चे पहले हद से निकल करके बेहद में आए और बेहद में कुछ सालों तक बेहद जीवन का अनुभव करते करते, खुशियों को अनुभव करते करते, फिर कहीं ना कहीं हद की तरफ अपना मुख मोड़ लेते हैं। अर्थात जो सांसारिक सुविधाएं, जो सांसारिक साधन है, उपलब्धियां हैं, प्रशंसा है, प्राप्तियां हैं, उनमें फंस जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि जो आत्माएं मंजिल को छोड़कर साइड सीन में फंस जाते हैं वो कभी भी अपने मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बाबा ने कहा कि वो कभी भी राज्य भाग के अधिकारी नहीं बन सकते हैं। साथ साथ बाबा ने यह भी कहा कि वो कभी भी रॉयल फैमिली में भी नहीं आ सकते हैं, वो प्रजापद के अधिकारी बनेंगे। तो हमें अपने आप को देखना है, अपने आप से पूछना है कि हम वर्तमान समय बेहद में रहते हैं या बेहद से निकल करके कभी कभी हद में भी चले जाते हैं। तो अगली पॉइंट है स्लोगन। बाबा ने संसार की आत्माओं का एग्जाम्पल दिया, उनका जो स्लोगन है उसको याद दिलाया कि संसार की आत्माओं के पास जो अल्पकाल की प्राप्तियां होती हैं, उपलब्धियां होती हैं, साधन होते हैं, वो कहते हैं कि खाओ पियो और मौज करो। उनका स्लोगन है खाओ पियो और मौज करो। लेकिन ब्राह्मण आत्माओं के लिए वो स्लोगन सूटेबल नहीं है, क्योंकि जिन चीजों को उपयोग में ला करके वो खाओ पियो और मौज करो का स्लोगन को अप्लाई करते हैं, ब्राह्मण आत्माएं उन चीजों के माध्यम से ये नहीं कह सकते हैं। क्योंकि जो साधन सुविधाएं मिली हुई हैं वो टेम्परेरी है। हम वर्तमान समय भी देखते हैं कि वर्तमान समय जो वैश्विक महामारी चल रही है, और इस महामारी के चलते संसार में बहुत सारे साधन हमारे उपयोग में नहीं आ रहे, यूज में नहीं आ रहे। तो जो आत्माएं उन साधनों पर निर्भर थी, उनके माध्यम से जीवन में खुशियों का अनुभव कर रही थी, मौजों का अनुभव कर रही थी, उसको ही जीवन का आधार बना करके चल रही थी, आज वो साधन नहीं है। तो जब आज वो साधन उनके जीवन में नहीं है तो उनके जीवन में खुशी भी नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं कि आप इस स्लोगन को अपने जीवन में अप्लाई नहीं कर सकते हो कि खाओ पियो और मौज करो, क्योंकि संसार में जो भी साधन है वो सब विनाशी है, परिवर्तनशील है, टेम्परेरी है। लेकिन आपका लक्ष्य है, आपकी मंजिल है कि आपको जीवन में स्थायी खुशी का अनुभव करना। आगे बाबा ने सेवा की परिभाषा बताई। तो बाबा कहते हैं कि और हम सब ब्राह्मण आत्माओं का जो जीवन है वो सेवा के लिए समर्पित है, हम सभी सेवा के फील्ड पर उपस्थित हैं। तो बाबा कहते हैं कि कोई भी कार्य करो, कोई भी बड़े से बड़ा कार्य करो, कोई भी सेवा करो, तो वो कार्य करते हुए, वो सेवा करते हुए आपकी स्थिति कभी भी हद में ना आए। वो कार्य करते करते आपके जीवन में कभी भी कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कभी भी कोई आपके मन में मोज पैदा ना हो, क्योंकि जिस कार्य के लिए आप उपस्थित हैं वो बेहद का कार्य है। तो ऐसा ना हो कि वो सेवा का कार्य करते करते आपके मन में कई उलझन पैदा करे, आपके मन में मोज पैदा करे और आपको बेहद से हद में ले आए। तो बाबा ने कहा कि सेवा अर्थात खुशी देने वाली, सेवा अर्थात फूलों के बगीचे का अनुभव कराने वाली, सेवा अर्थात फूलों की खुशबू की अनुभूति कराने वाली, न कि सेवा आपके जीवन से खुशी को छीनने का काम करे। क्योंकि हम आप सभी एक संगठन के साथ रहते हैं और इस संगठन में वैरायटी संस्कारों वाली आत्माएं होती हैं, तो उन सभी आत्माओं के साथ रहते हुए हमारा लक्ष्य रहे कि सेवा करते करते हमारी खुशी हद में डिपेंड ना हो, उस सेवा में रहते रहते संस्कारों का टकराव, संस्कारों का मनमुटाव, जब हमारी आपस में राय नहीं मिलती है तो आपस में टकराव होता है, और जहां टकराव होगा, जहां मनमुटाव होगा, तो फिर हमारी स्थिति बेहद से निकल करके हद में आ जाती है, हमारी खुशी भी खत्म हो जाती है। तो बाबा ने कहा कि इस बात को भी देखना है कि हम सेवा के फील्ड में हैं, तो सेवा के फील्ड में रहते रहते हम रूहानी बगीचे का अनुभव करते हैं, खुशबूदार जीवन का अनुभव करते हैं, या जीवन में कभी खुशी, कभी मूंज, कभी उमंग उत्साह, कभी उदासी, इसका अनुभव करते हैं। और बाबा ने कहा सच्ची सेवा अर्थात जो औरों को भी खुशी दिलाए और स्वयं को भी खुशी हो, हमारे जीवन में खुशी मल्टीप्लाई होती रहे। और बाबा ने कहा कि सच्ची सेवा जो है वो बाप दादा और बड़ों से दुआओं की प्राप्ति की अनुभूति कराएगी। ऐसा अनुभव होगा जैसे बाप दादा से और निमित्त बनी हुई आत्माओं से हमें जो दुआएं मिल रही हैं, उन दुआओं से ही जैसे कि हम खुशी के सागर में लहरा रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि इस ब्राह्मण जीवन में सेवा करते करते जो सेवा आप कर रहे हैं, उस सेवा में यदि आपकी खुशी गुम हो रही है, उस सेवा आपकी खुशी को खत्म कर रही है, तो बाबा कहते हो सेवा को छोड़ दो, ये खुशी को नहीं छोड़ो। अर्थात बाबा हमें ब्राह्मण जीवन में जो बेहद की खुशी प्राप्त हो रही है, उस खुशी का इम्पोर्टेंस बता रहे हैं। इस ब्राह्मण जीवन में जो खुशी है, उस खुशी को नहीं छोड़ो। उस खुशी के खत्म करने वाली जो बातें हैं, यहां तक कि बाबा ने कहा सेवा को छोड़ दो या अन्य जो बातें हैं, उन बातों को छोड़ दो, ये खुशी को नहीं छोड़ो। तो ये आज के बाबा के मुरली के महावाक्य थे, और बाबा ने इसके साथ साथ पार्टियों से मुलाकात की, जिसमें दो ग्रुप हैं। पहले ग्रुप से बाबा ने कहा कि सदा न्यारे और एक बाप के प्यारे रहते हो, जीवन में हम अनेक अनेक प्रकार की बातों के संपर्क में आते हैं, तो बाबा कहते हैं न्यारे और प्यारे होकर रहना है, क्योंकि अगर हम किसी व्यक्ति के, किसी साधन के, सुविधाओं के प्यारे बनेंगे, तो बाबा ने कहा कि वो आपके जीवन में विघ्न का काम करेगा। इस संगम योगी ब्राह्मण जीवन में बाबा हमें स्लोगन देते हैं, एक विधि बताते हैं, जिस ब्राह्मण जीवन में एक बाप के प्यारे बनकर रहना है, बाकी सबके साथ निमित्त मात्र प्यार रखना है। तो बाबा कहते हैं न्यारे और प्यारे बनकर रहेंगे तो जो जीवन में जो व्यक्ति है, वस्तु है, वैभव है, उनसे जो विघ्न पैदा होते हैं, उनसे आप सहज ही अपने आप को मुक्त रख सकते हैं। यदि आप उनसे न्यारे नहीं बनेंगे तो आपके इस ब्राह्मण जीवन में वो कहीं ना कहीं विघ्न का रूप ले लेंगे। तो बाबा ने कहा कि उनसे यदि अटैचमेंट होगा, उनसे लगाव होगा, तो वो आपके जीवन में विघ्न का रूप धारण कर लेंगे, और फिर आपको जीवन में आगे बढ़ने में रुकावट डालेंगे, सफलता को भी प्राप्त नहीं होने देंगे। इसलिए न्यारे और प्यारेपन का ये अभ्यास करो। बाबा ने हमें एक एग्जाम्पल दिया अंगद का। बाबा कहते हैं कि अंगद की विशेषता क्या थी, वो निश्चय बुद्धि था, उसको निश्चय था कि हमारी विजय अवश्य होगी। तो बाबा ने कहा कि जैसे अंगद को निश्चय था कि हमारी विजय अवश्य होगी, उस अंगद के पांव को कोई भी हिला नहीं सका। तो ऐसे ही ब्राह्मण जीवन में जो माया अनेक प्रकार के विघ्न, अनेक प्रकार के पेपर, अनेक प्रकार की बाधाएं लेकर के आती है, तो बाबा कहते हैं आपको अंगद समान अचल बनना है। इसके लिए निश्चय का होना बहुत जरूरी है। कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी, और जो निश्चय बुद्धि होते हैं वो हमेशा निश्चिंत रहते हैं। तो बाबा कहते हैं जो भी आपके जीवन में माया कोई विघ्न लाती है, तो उन माया के विघ्नों के होते हुए माया के आगे कभी भी सरेंडर नहीं होना है। माया आपके आगे सरेंडर हो जाए, इसके लिए आपका निश्चय मजबूत हो, वो आवश्यक है। अगर निश्चय का अभाव होगा, निश्चय की कमी होगी, तो आपकी स्थिति बार बार डगमग होती रहेगी और जीवन में सफलता का भी अनुभव नहीं होगा। तो बाबा ने कहा अपने आप को देखो, चेक करो कि कहीं निश्चय की कमी तो नहीं है। बाबा ने तीन बातें याद दिलाई। पहली बात कही कि ड्रामा के निश्चय में कमी तो नहीं है। यदि जीवन में कोई विघ्न आ रहा है और उस विघ्न में हलचल हो रही है, मन में उलझन है, परेशानी है, डिस्टर्बेंस है, तो बाबा कहते हैं कहीं ना कहीं निश्चय की कमी है। तो पहला है ड्रामा के ज्ञान में निश्चय की कमी, दूसरा स्वयं के ऊपर निश्चय की कमी, और तीसरा बाप में निश्चय की कमी। अगर इन तीनों बातों में निश्चय की कमी होगी तो जीवन में कोई ना कोई विघ्न काम करता रहेगा। तो बाबा कहते हैं कि निश्चय बुद्धि बनो, निश्चय बुद्धि बनेंगे तो कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती, और निश्चय बुद्धि आत्माएं हमेशा निश्चिंत रहती हैं। अगर जीवन में निश्चिंता नहीं है, चिंताएं हैं, तो चिंता वालों के लिए कहा जाता है चिंता एक चिता के समान है, चिंता एक अग्नि है, एक बीमारी है। और बाबा ने कहा चिंता एक ऐसी बीमारी है जिसकी दवाई डॉक्टर के पास भी नहीं है। डॉक्टर थोड़े समय के लिए सोने के लिए गोली दे सकते हैं, लेकिन व्यक्ति के जीवन से चिंता मिट जाए उसकी दवाई डॉक्टर के पास नहीं है। और बाबा ने कहा चिंता वाला व्यक्ति जितना प्राप्तियों के पीछे भागता है वो तो प्राप्तियों से और ही दूर भागती है। इसलिए जीवन में कोई भी चिंता नहीं होनी चाहिए, उसके लिए बाबा कहते हैं कि एक बल एक भरोसा, निश्चय बुद्धि बनो। एक बल एक भरोसा जो ब्राह्मणों के बुद्धि के पांव है, निश्चय बुद्धि का पांव है, तो ये पांव आपका मजबूत हो। आगे बाबा ने दूसरे ग्रुप से मुलाकात में कहा, बाबा ने भक्ति मार्ग का वायदा याद दिलाया, तो बाबा ने भक्ति मार्ग का वायदा याद दिलाया कि आपका क्या वायदा था। आप हम सभी ने भक्ति मार्ग में वायदा किया था, किया होगा कि हम भगवान पर बलिहार जाएंगे। भगवान के आगे कहते थे हे प्रभु, जब आप इस संसार में आएंगे तो हम आप पर बलिहार जाएंगे, अर्थात तन मन धन से हम आप पर कुर्बान जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि आपका वायदा है कि हम बलिहार जाएंगे, और जो आत्माएं बाप पर बलिहार जाती हैं वो आत्माएं बलवान बन जाती हैं, और जो आत्माएं बलवान बन जाती हैं उन आत्माओं के आगे माया सरेंडर हो जाती है। तो बाबा ने कहा कि आप बाप के आगे सरेंडर होने वाली आत्माएं हो, माया के आगे नहीं, माया आपके आगे सरेंडर होने वाली है। तो इसलिए इस वायदे को याद रखना है, अर्थात हमारे पास जो कुछ भी है तन मन धन वो सब बाप पर समर्पित करना है, और बाप पर समर्पित करके बाप की जो श्रीमत है उस अनुसार जीवन में चलना है। फिर बाबा ने नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मकर संक्रांति के याद प्यार दी, और बाबा ने उसके जो उसका महत्व है उसके बारे में बताया, उसमें 5-6 बातें हैं। तो बाबा ने कहा कि आज के दिन का विशेष महत्व है, पहले पॉइंट है कि आज के दिन का विशेष महत्व है कुछ खाते और खिलाते हैं। तो बाबा ने कहा कि मकर संक्रांति के दिन लोग दूसरों को तिल खिलाते हैं, तिल खाते हैं और खिलाते हैं, लेकिन वो केवल तिल ही नहीं खाते हैं, तिल के साथ साथ कुछ मिठाई उसमें मिक्स करते हैं, कुछ मीठा मिलाते हैं, जैसे कि गुड़ या चीनी, क्योंकि अगर केवल तिल खाएंगे तो हल्का सा कड़वा लगेगा। तो बाबा ने कहा कि आज के दिन का महत्व है कि दूसरों को खिलाते हैं और खुद भी खाते हैं। तो वैसे भी हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति में आज के दिन विशेषकर तिल के लड्डू बनाते हैं, तिल पट्टी बनाते हैं, तिल की रेवड़ी बनाते हैं, और वो खाते भी और दूसरों को खिलाते भी है। और इस समय के सीजन में, सर्दियों के सीजन में, ये स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होते हैं और बहुत स्वादिष्ट भी होते हैं, इसको लोग बड़े चाव से खाते हैं और दूसरों को खिलाते भी हैं। तो बाबा ने कहा कि आज के दिन का महत्व है कि खाना और खिलाना। तो बाबा ने कहा कि तिल बहुत छोटी चीज है, बाबा ने यहाँ आत्मा से उसकी तुलना की है, कि जैसे तिल बहुत छोटी सी होती है इसी प्रकार से आत्मा भी छोटी सी बिंदी है। तो आप एक तो छोटी सी बिंदी आत्मा की स्मृति में रहते हो, साथ साथ बाबा ने कहा कि आत्मा की स्मृति में रहने के साथ साथ आपको मधुरता के गुण को भी जीवन में यूज करना है। जब इन दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन होगा, दोनों मिलकर के आप, दोनों को मिलाकर के आप किसी के संबंध संपर्क में आएंगे, संगठन में आएंगे, तो इससे संगठन में एकता भी बढ़ेगी और साथ साथ सफलता भी मिलेगी। दूसरी बात बाबा ने कही कि जैसे तिल छोटी होती है, इसी प्रकार से जीवन में जो अनेक प्रकार की बातें आती हैं, वो बातें बहुत छोटी सी होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं होती हैं, लेकिन उन छोटी छोटी बातों को हम बार बार चिंतन में ला करके, हम बार बार अपने मन में उनको रिवाइज करते हैं और साथ साथ दूसरों को सुनाते भी हैं, तो इससे वो छोटी छोटी बातें बड़ी हो जाती है। जो कहावत है तिल का ताड़ बनाना, राई का पहाड़ बनाना, वो फिर नियम यहाँ लागू होता है। तो छोटी छोटी बातें जो हैं, उनको पहाड़ नहीं बनाना है, उनको तिल समझ करके वहां ही उनको समाप्त कर देने हैं। तीसरी बात बाबा ने कही कि आज के दिन पतंग उड़ाते हैं, और पतंग क्यों उड़ाते हैं? खुशियों के लिए, एंजॉय के लिए। तो उमंग उत्साह में सदा उड़ते रहें, अपनी मंजिल की ओर हमेशा आगे बढ़ते रहें, तो इसके लिए बाबा कहते हैं कि बाप की श्रीमत को फॉलो करो। यदि आप बाप की श्रीमत पर कदम दर कदम चलते रहेंगे, तो आप भी जीवन में हमेशा उमंग उत्साह में उड़ते रहेंगे, पतंग के समान उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। अगली बात बाबा कहते हैं कि आज के दिन दान भी करते हैं। तो बाबा ने यहां कहा कि जो भी कमी कमजोरियां हैं, उन कमी कमजोरियों को भी छोटा समझ करके, तिल के समान छोटा समझ करके उनको दान दो। यदि उनको आप बड़ा समझेंगे, तो हो सकता है कि वो संकल्प आए कि इसको हम कैसे दान में दें, क्योंकि छोटी वस्तु को दान देना सहज होता है। संसार में भी कोई किसी को दान देते हैं तो छोटी मोटी वस्तु को सहज दान दे देते हैं, बड़ा दान देने में व्यक्ति को सोचना पड़ता है। उस ब्राह्मण जीवन में जो कमी कमजोरियां हैं, बाबा कहते हैं कि उसको दान दो। तो आज का दिन दान का महत्व भी है। और लास्ट बात बाबा ने कही कि आज के दिन आग जलाते हैं, तो आप दृढ़ संकल्प की अग्नि जलाओ, और उस दृढ़ संकल्प की अग्नि में पुराने संस्कारों को सुहा करो। ब्राह्मण जीवन में सबसे बड़ी बाधा, सबसे बड़ी रुकावट पुराने संस्कार, साथ साथ पुरानी स्मृतियां, जो दर्दनाक स्मृतियां हैं, पास्ट के जीवन के ट्रॉमेटिक मेमोरीज, जिन्होंने मन को बहुत दुखी किया हुआ होता है। तो ब्राह्मण जीवन में जो दो चीजें हैं, एक तो संस्कार, दूसरी पास्ट जीवन के पुरानी दर्दनाक स्मृतियां, तो बाबा कहते हैं कि उनको इस दृढ़ संकल्प की अग्नि में उनको स्वाह करो, उनको जलाओ। जब तक जीवन में ये दोनों चीजें काम करती रहेंगे, तब तक ब्राह्मण जीवन में स्थायी खुशी का अनुभव नहीं कर सकेंगे। और आज के मुरलीन बाबा ने वरदान दिया, वरदान विषय तीन बातें याद दिलाई, भगवान, भाग्य और भाग्यवान। बाबा कहते हैं आप भाग्यवान आत्माएं हो और आपको श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त हुआ है। कौन सा भाग? कि स्वयं भगवान आपकी पालना कर रहा है। संसार में लोग भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान को उठाते हैं, उनको नहलाते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, और संगम पर आप श्रेष्ठ आत्माओं की भगवान सेवा करता है। तो ये हम आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का कितना बड़ा भाग्य है, जो स्वयं भगवान, दुनिया का मालिक, सृष्टि का मालिक, वो हमारी सेवा कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अपने इस भाग्य को बार बार याद करो कि सुबह से लेकर के शाम तक भगवान हमारी किस किस प्रकार से सेवा करता है। तो बाबा कहते हैं कि बाप आपको, भगवान आपको सुबह जगाता है, अमृत वेले आपको जगाता है, मीठे बच्चे, लाडले बच्चे कह करके मधुर गीत संगीत के साथ आपको उठाता है, आपका श्रृंगार करता है, ज्ञान रत्नों से, गुणों से, शक्तियों से आपका श्रृंगार करता है। और सारे दिन में जो आप सेवाएं करते हो, उन सेवाओं में आपको आपका सहयोगी बनकर के आपको सफलता की अनुभूति कराता है। और आपको हर दिन ब्रह्मा भोजन का आपको भोग लगाता है। तो अपने इस भाग को हमेशा याद रखो तो आपके जीवन या आप अपने जीवन में भाग्यवान स्थिति का अनुभव करते रहेंगे। और आज का स्लोगन है सच्ची सेवा। बाबा ने कहा कि अपने हर्षित मुख चेहरे से दूसरों को प्राप्ति की अनुभूति कराना, इसको कहेंगे सच्ची सेवा। तो आज के मुरली में बाबा ने हमें बहुत सारी बातें बताई हैं, जिसमें कि पहले पॉइंट थे डबल ड्रूप की सभा देखी, एक होली और हैप्पी हंसों की सभा। फिर बाबा ने अपवित्रता का क्या क्या परिभाषा है वो बाबा ने उसको विस्तार से बतलाया कि हम किसी व्यक्ति, वस्तु, वैभव, किसी के नाम मान सम्मान, इन चीजों पर यदि हमारी खुशी निर्भर है तो उसको भी अपवित्रता ही कहा जाएगा। साथ साथ बाबा ने खुशी की चेकिंग के लिए कहा कि हमारी खुशी हद की प्राप्तियों पर निर्भर है या फिर बेहद की प्राप्तियों पर निर्भर है, क्योंकि संगम युग पर बाबा ने जो हमें बेहद की प्राप्तियां कराई हैं, हमारी खुशी उन पर निर्भर होनी चाहिए। नहीं तो आगे आने वाले समय में जब संसार की हद की चीजें समाप्त होंगी तो हमारी खुशी भी समाप्त हो जाएगी। साथ साथ बाबा ने सेवा के लिए कहा कि सेवा करते हुए आपको सेवा हाथ में ना ले आए, सेवा में आपको फूलों के बगीचे का अनुभव हो, सेवा में आपको फूलों के खुशबू के अनुभूति कराने वाली सेवा हो, सेवा में उलझन ना हो, टकराव ना हो, मनमुटाव ना हो। यदि जीवन में उलझन है, मनमुटाव है, टकराव है तो बाबा कहते हैं वो सेवा को छोड़ दो, या जीवन में ऐसी बातें हैं उन बातों को छोड़ दो, लेकिन अपनी खुशी को नहीं छोड़ो। तो ये बाबा की आज के मूल्य के कुछ विशेष पॉइंट्स थे जो आप हम सभी ने रिवाइज किए, और आप हम सभी इनका और भी गहराई से चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, इनका अनुभव करेंगे। तो बाबा ने कहा कि इस जीवन में आपको स्थायी खुशी का अनुभव करना है, उसका हम अनुभव करते रहेंगे। ओम शांति।
मुश्किलों में भी सदा तू मुस्कुराए जा,
खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा, खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा।
चीर कर अंधेरों को सूरज जो निकलता है, सूरज जो निकलता है,
बादलों से डर के वो राहें नहीं बदलता है, राहें नहीं बदलता है,
कांटों में जो खिलता है, शोलों में पलता है, गुल वो ही गुलशन,
गुल वो ही गुलशन की तारीखें बदलता है,
तूफान को भी तोहफा तू बनाए जा,
खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा,
मुश्किलों में भी सदा तू मुस्कुराए जा।